नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हवाई अड्डा उन्नत कार्गो प्रणाली से सुसज्जित है। इसे प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन माल की ढुलाई की जा सकेगी, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुच्चेरी और 4 अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली है। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। आयोग ने कहा है कि जांच के बाद 2,140 उम्मीदवार मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में आज सुबह मार्कपुरम जिले के रायवरम के पास एक निजी बस और ट्रक की टक्कर से 13 लोग जलकर मर गए और 22 अन्य घायल हो गए। दोनों वाहन आग में पूरी तरह जल गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों से बात कर दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से घायलों की सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने को भी कहा। श्री नायडू ने दुर्घटना की गहन जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। पिछले 4 वर्ष में राज्य के विभिन्न जेलों में कथित तौर पर 285 कैदियों की मौत के मामले में आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किया है। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य के जेलों में कैदियों की संख्या अत्यधिक है, जिससे उनमें संक्रमण और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और कमजोर लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत संघर्ष समाप्त करने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने कहा कि संघर्ष के परिणाम उन नागरिकों को भुगतने पड़ रहे हैं जिनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन ही इस संकट का एकमात्र समाधान है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने होर्मुज जलडमरों मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही बाधित रहने पर भी चिंता व्यक्त की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान ने भारत, चीन तथा रूस सहित कई अन्य मित्र देशों को होर्मुज जलडमरों मध्य का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। ईरान के इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को रोकने के बाद से दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस मार्ग से विश्व के लगभग 20% प्राकृतिक ईंधन की ढुलाई होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलमार्ग न खोलने की स्थिति में ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ईरान के विरोधी देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत ने पिछले कुछ सप्ताह में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरों मध्य को खोलने के लिए कई राजनयिक प्रयास किए हैं। बांग्लादेश में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण में स्थित राजबाड़ी जिले में पद्मा नदी में एक बस के गिरने से 10 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 18 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। देश में आज रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज मां महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए श्री मोदी ने प्रार्थना की कि मां महागौरी की दिव्य आभा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।